नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कर्मियों की बहादुरी की सराहना की, कहा उनकी वीरता देश के इतिहास में अमर रहेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर से सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले वित्त वर्ष में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 में 6.5% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में 1.5% से अधिक की तेजी। और टेनिस में रोहन बोपन्ना और उनके अमरीकी जोड़ी बेन शेल्टन आज जर्मनी में बेवरियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसमें सीआरपीएफ के जवान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री शाह आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोबरा बटालियन के जवान देश को नक्सल मुक्त बनाने में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और उनके अदम्य साहस के बल पर ही नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्ति का संदेश का संकल्प पूरा होगा। श्री शाह ने कहा कि देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं।
सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित।
देश के अमर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के इतिहास में सुरक्षा बलों के अमर शहीदों की शौर्य गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों की सराहना करते हुए कहा कि देश सशक्त और समृद्ध बन रहा है, इसमें उनके परिवार का अतुलनीय योगदान है।
सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2,264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया है और वो सभी 2,264 शहीदों के परिवार जनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके परिवार जनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है।
श्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों का कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ने, पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने और नक्सलियों की गतिविधियों को नियंत्रित रखने में विशेष योगदान है। वीर जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्होंने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड का निरीक्षण भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है और विश्व में रक्षा निर्यात में इसकी क्षमता बढ़ रही है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में डिफेंस कॉन्क्लेव फोर्स ऑफ द फ्यूचर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है।
हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी कर सके बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।
श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया था। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हों या वक्फ बाय डीड। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। स्मार्टफोन पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरे हैं। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें स्थान पर था और अब ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2020 में स्मार्टफोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की थी, जो इस क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के हैं। नए आयकर विधेयक 2025 पर लोकसभा की प्रवर समिति नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बैठक कर रही है। 31 सदस्यीय समिति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा से नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये मामला गुरुग्राम में एक जमीन की खरीद से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक युद्ध बताया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और उन्हें पिछली कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि इस भूमि सौदे में महज 4 महीने में लगभग 700% लाभ अर्जित किया गया, जो जांच के दायरे में है।
An objection on the file on the application made by Robert Wadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. License nahi milna chahiye.
श्री भाटिया ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि भूमि सौदे और नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता मानते हैं कि वे देश के कानून से ऊपर हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बैठक पटना में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो रही इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के सभी 6 घटक दल हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने पिछले 3 वर्षों में IIT, JEE और नीट से संबंधित कोचिंग सेंटरों को भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान 24 कोचिंग सेंटरों पर 75,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। CCPA ने कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 6.5% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दूसरी ओर विश्व मंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। व्यापार और विकास पूर्वानुमान रिपोर्ट 2025 में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो उच्च सरकारी खर्च और मौद्रिक नीति प्रोत्साहन के साथ विकास को गति दे रहे हैं। रिपोर्ट में चीन की विकास दर 4.4% रहने का अनुमान है, अमरीकी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ की वृद्धि दर के 1% रहने का अनुमान है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और इटली की वृद्धि दर के 1% से कम रहने की आशंका जताई गई है। इसी तरह जापान की आर्थिक वृद्धि दर घटकर मात्र 0.5% रह सकती है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने आज नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन और आईबीसीए के महानिदेशक डॉ एसपी यादव ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत आईबीसीए मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करेगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में 1.5% से अधिक की तेजी आई है। सेंसेक्स 78,503 अंक पर आ गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,862 पर कारोबार कर रहा है। भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय मंथन शिविर आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्व, डीपीआईआईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कौशल विकास और उद्यमिता सहित विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
टेनिस में बवेरियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और अमेरिका के बेन शेल्टन आज दोपहर जर्मनी में पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम के सैंडर गिले और पोलैंड के जॉन जिलिंस्की से भिड़ेंगे। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बोपन्ना और शेल्टन ने चौथी वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के जेमी मरे और अमरीका के राजीव राम को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया था। उधर आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक सुपर ओवर में पराजित किया।
मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं बिहार, असम और मेघालय के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 और 19 अप्रैल को शिमला समेत प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहा, वहीं तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मौसम खराब होने का अनुमान लगाया है। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 5 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बारिश होगी। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 अप्रैल तक मौसम खराब रह सकता है। प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति में राष्ट्रहित को हमेशा प्रमुखता दी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा बुनाई की पुरानी परंपरा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन 13 राज्यों के हथकरघा बुनकरों को एक साथ लाएगा। ये प्रदर्शनी बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस आयोजन में हथकरघा उत्पादों के 25 स्टॉल शामिल हैं। इन स्टॉलों में साड़ियों, ड्रेस मटेरियल स्टॉल और दुपट्टों को शामिल किया गया है। ये प्रदर्शनी 24 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। मध्य पूर्व के सबसे बड़े समसामयिक कला मेले वर्ल्ड आर्ट दुबई का 11वां संस्करण आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। ये 20 अप्रैल तक चलेगा। मेले में 400 दीर्घाओं में 65 से अधिक देशों के कलाकारों की 10,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कर्मियों की बहादुरी की सराहना की, कहा उनकी वीरता देश के इतिहास में अमर रहेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर से सुनवाई हुई। अदालत ने कानून के अमल पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पिछले वित्त वर्ष में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 में 6.5% की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में 1.5% से अधिक की तेजी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।